ओम शांति। कल हम सभी ने प्यारे बाप दादा की बहुत सुंदर मुरली सुनी। इस मुरली में जो ज्ञान रतन सुने उसका मंथन करके उसका मक्खन बनाने के लिए, वो मक्खन हमें खिलाने के लिए हमारे बीच उपस्थित है बॉम्बे से पधारे हुए आदरणीय भ्राता रमेश भाई जी। हम सभी आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं भाई जी। स्वागत है, स्वागत है। आप यज्ञ के प्रमुख वरिष्ठ भाइयों में से एक है। बीकॉम एलएलबी के पश्चात आपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्जाम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आके पास किया है और ईस्ट और वेस्ट फिलोसॉफी में पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है। अपने पढ़ाई के लिए और उसके अतिरिक्त 4000 से अधिक किताबों का आपने अध्ययन किया। एक तरफ अकाउंटेंसी और दूसरी तरफ फिलोसॉफी के आप लेक्चरर रहे हैं। 1952 में आप ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आए और 1961 से ईश्वरी सेवा में पूर्ण रूप से जुट गए। सेवा की अनेक नई गतिविधियां आपने यज्ञ में शुरू की। विदेश सेवा के पहले डेलीगेशन में भी आप सम्मिलित थे जिस द्वारा लंदन हांगकांग में सेंटर्स खोले और उसके बाद यूएसए सिंगापुर मलेशिया ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में भी सेंटर्स खोलने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आपने और आदरणीय उषा बहन जी ने गुजरात में भी अनेक सेंटर्स खोले हैं। वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय में अनेक जिम्मेवारियां निभा रहे हैं। विद्यालय के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल के रूप में आप आर्थिक एवं कानूनी कारोबार संभालते हैं। वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट के आप मैनेजिंग ट्रस्टी हैं। ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर हैं। राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। जूरिस्ट विंग के आप चेयरपर्सन है और श्री शिव आध्यात्मिक फाउंडेशन के मैनेजिंग ट्रस्टी एवं स्पार्क के भी आप चेयरपर्सन है। आप एक बहुत कुशल वक्ता एवं बहुत अच्छे लेखक भी है। अनेक किताबें आपने लिखी है जिसमें हम सभी ने अवश्य पढ़ी होगी पवित्र धन। कई लेख और डांस ड्रामा भी आपने लिखे हैं। यूनाइटेड नेशंस का विशेष अवार्ड इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सीलेंस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इस अवार्ड से भी आप गौरवान्वित हुए हैं। तो आइए, एक बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व हमारे सामने है। हम क्लास सुनेंगे कल के बाप दादा की मुरली का विस्तार और स्पष्टीकरण। आदरणीय रमेश भाई जी।
ओम शांति। मैं हमेशा ही बहनों को कहता हूं कि मेरा वास्तविक परिचय दो शब्दों का ही है कि रमेश भाई आत्मा है और परमात्मा की संतान है। इनसे ज्यादा बड़ा और क्या परिचय हो सकता है? तो वो परिचय कोई बहन देती नहीं और बाकी सब बातों का परिचय देती है। इसलिए मेरे को अपना परिचय देना पड़ा कि मैं आत्मा हूं और श्री बाबा की संतान हूं। मुझे ड्यूटी मिली हुई है कल का जो मुरली का कारोबार, जो बाबा ने स्टेज पर आकर के कहा, हम बच्चों को मुरली के द्वारा ज्ञान खजाने को दिया, उसके बारे में उसका रिवीजन कोर्स के रूप में कारोबार करना है। ये भी जरूरी है क्योंकि जैसे गाय होती है, घास तो खा लेती वैसे उगारती रहती है, जिसको हमारी दादी जानकी कहती है कि विचार सागर मंथन तो करना ही चाहिए। तो इस प्रकार से कल की मुरली के ऊपर विचार सागर मंथन सामूहिक रूप में करते हैं तो मालूम पड़ता है कि बाबा ने क्या क्या कई नई बातें कल मुरली के अंदर कही हुई है। मैंने आपको जानते हैं आप सब अभी कि मैं बाबा की मुरली को बराबर लिखता भी हूँ और टाइमिंग भी लिखता हूँ। गुलजार दादी जैसे कि स्टेज पर बैठे 7:20 को बैठे, 7:25 वो बाबा के पास ध्यान में गए, 7:32 को अव्यक्त बाप दादा की पदरहमनी हुई और 7:42 7:42 को बाबा ने मुरली शुरू किया और फिर मुरली आदि का मिलनी करने का कारोबार जो है 9:07 तक चला। उसके बाद स्टेज का कारोबार चला वो 9:37 तक चला, 9:37 को बाबा हम बच्चों से विदाई लेकर के गए और 9:45 9:45 तो को गुलजा दादी हम बाबा के पास से वापस आई। इस प्रकार से कल का कारोबार टाइमिंग मैनेजमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इस सीजन के अंदर बाबा ने अपना कारोबार जो भी है यहाँ आने का और यहाँ मुरली जलाने का आदि कारोबार के अंदर उसको कंडेंस कर दिया हुआ है। एक जमाना था जब बाबा ऊपर पांडव भवन के एवं शांति भवन के अंदर आते थे और एक बार जब सुखधाम का ओपनिंग करना था उस दिन आप शाम को 6:30 आए और दूसरे दिन सुबह 9:30 गए। कितना 12-15 घंटे तक बाबा हम बच्चों के साथ में थे। अब आस्ते आस्ते बाबा, मैं हमेशा ही बाबा को हंसते हंसते कहता हूँ कि बाबा आप दिन प्रतिदिन आप महंगे होते जा रहे हैं क्योंकि बहुत कम समय हमारे साथ व्यतीत करते हैं। जितनी संख्या यहाँ बढ़ती है इतना बाबा का समय कम होता जाता है। कल भी देखो कितने कम से कम 30,000 बहन भाई तो थे ही और उसके बीच में मतलब उतना होते हुए भी हम बाबा ने और चक्कर लगाए। बाबा ने कहा मैंने चक्कर लगाया, कोई टेंट में रहा हुआ है आदि आदि सारी बातें बताई। पर तुम स्टेज पर तो प्रोग्राम 2 घंटे में ही पूरा कर दिया और हमारे राजू भाई ने कल की मुरली का टाइटल बनाया हुआ है असार के रूप में कि कर्मयोगी जीवन में तीव्र पुरुषार्थ द्वारा हर सब्जेक्ट में सदा संतुष्ट और खुश रहो, अपने खुशनुमा और दिव्य गुण संपन्न चेहरे द्वारा खुशी का अनुभव कराओ। ये इन्होंने मुरली का सार के रूप में कहा हुआ है। बाबा ने तो आकर के पहले ही महावाक्य के अंदर किस बात के लिए आए हुए हैं वो सारा ही बाबा ने बता दिया कि आज बाप दादा अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख हर्षित होते हैं। तो खजाने की बात के बारे में करना था और खजानों की बात के आधार पर हर्षित और हर्षित चेहरों के द्वारा खुशी का चेहरों के द्वारा कैसे सेवा हो सकती है वो बाबा ने गर्भित सार के रूप में पहले ही महावाक्य में बता दिया। और बाबा ने याद कराया, सीधा ही बाबा मुरली के ऊपर चले गए और कहा कि आदि से लेकर के कितने खजाने बच्चों को मिले हैं वो मतलब बाबा ने कल 4 खजाने की बात कही। दादी जानकी की माफी करना चाहिए, दादी जानकी क्लास कराती है तो कहता है ये इतनी 3 बातें हैं, ये 5 बातें हैं, ऐसे ऐसे करके याद रखती है और याद रख करके हमको कहती है। तो जैसे कि एक कॉलेज का कोई प्रोफेसर होता है ना वो कैसे बात करता है, इस प्रकार से बात करती है दादी जानकी कि बाबा की मुरलियों के आधार पर भी। तो हम भी कल की बाबा की मुरली के आधार पर 4 मुख्य खजाने जो और 1 खजाने में क्या क्या है वो पूरा ही याद रखे तो क्या हो जाएगा, वो खजाने से हम संपन्न बन जाएंगे। जैसे बाबा ने बताया कि पहला खजाना है ज्ञान का, ज्ञान का जो खजाना मिला हुआ है वो सबसे, आप जानते भी हमारा यह विश्वविद्यालय का 4 मेन सब्जेक्ट है ज्ञान योग धारणा और सेवा। तो उसके अंदर बाबा ने कल खजाने के बारे में बताया तो पहला ज्ञान का खजाना है। ज्ञान के खजाने से क्या प्राप्ति होती है वो अभी हमें मालूम होना चाहिए और इसके आधार पर हम दुनिया के सामने किसी के जाएंगे तो सबको बताना चाहिए कि ईश्वरीय ज्ञान से क्या मिलता है। तो बाबा ने कहा कि इस ज्ञान के खजाने से सभी बच्चे भरपूर हो और औरों को भी खजाने से भरपूर कर रहे हैं। और फिर ज्ञान का खजाना क्या करेगा, ज्ञान क्या खजाना, हर एक जो भी बंधन में फंसाने वाले हैं उनसे मुक्त करके बंधन मुक्त और दुख अशांति मुक्त बनाने वाला है। तो ये ज्ञान की जैसे होती है ना, डॉक्टर को मालूम होता है कि ये दवा क्विनाइन है तो मलेरिया का जो बुखार जो उसको दूर करने का, इस प्रकार से ज्ञान के आधार पर क्या होगा इसलिए ये हमें मालूम होना चाहिए। इससे क्या होगा वो हमको भरपूर भी करता है और उसके आधार पर दुनिया की कई बातें जो है वो हमको बंधन में फंसाने वाली है उनसे मुक्त कर करके बंधन मुक्त दुख और अशांति मुक्त बनाने वाला है, ये हमको मालूम रहना चाहिए, ये याद रहना चाहिए। फिर दूसरी बात बताई कि दूसरा खजाना है योग का। अब योग से क्या प्राप्ति हो सकती है, देखो दो शब्दों में बाबा ने बता दिया हुआ है, ये हमको मालूम होना चाहिए। बाबा ने कहा योग जिससे बहुत शक्तियां प्राप्त होती है, योग से क्या होता है बहुत ही शक्तियां प्राप्त होती है। अभी क्या शक्तियां है वो तो हम सब जानते हैं, परंतु सार में हम बाबा ने बता दिया, पहले ज्ञान के बारे में बताया कि वो दुख और अशांति से मुक्त बनाने वाला खजाना है। योग से क्या होगा, शक्तियां प्राप्त होती है। और फिर तीसरा है धारणा का खजाना। धारणा के खजाने से क्या होता है, जिससे बहुत गुणों की प्राप्ति होती है। आज से ये बात ध्यान में रखिए, कहीं ऐसा न कर दे योग से गुण मिलते हैं और धारणा से शक्तियां मिलती है, ऐसा नहीं। धारणा से बाबा ने कहा कि जिससे बहुत बहुत गुणों की प्राप्ति होती है, परंतु बाबा ने बताया कि सबसे बड़े से बड़ा खजाना है, सबसे बड़े से बड़े का खजाना है संगम समय का खजाना। क्या है दुनिया में मालूम ही नहीं है, मैं नहीं समझता हूँ आप में यहाँ जितने भी बैठे हैं, हम सब जो बैठे हुए हैं किसी को भी बाबा का ज्ञान मिला उसके पहले संगम समय चल रहा है, वो किसी को मालूम नहीं होगा। किसी को मालूम था, मालूम ही नहीं था, हम तो समझते थे कलयुग तो अभी बच्चा है, ऐसा ही समझते थे ना। क्या शास्त्रकारों ने क्या हमको बताया, कलयुग अब बच्चा है। इसलिए तो मालूम ही नहीं था कि संगम अभी चल रहा है, बाबा ने ही बताया। और बाबा आए तब से समझो संगम युग शुरू हो गया। तो ये संगम युग रूपी खजाना जो है वो यह विश्वविद्यालय कहो, यह बाप दादा की कहो, हमको बड़े से बड़ी उपलब्धि है, प्राप्ति है। और इसके कारण क्या होता है कि संगम का समय कितना वैल्यूएबल है वो हमको दुनिया को बताना चाहिए। इसके कारण बाबा ने क्या कहा, संगम का समय है इसके ऊपर क्या होता है, बाप जो है शिव बाबा जो है तीन रूप से हमको मिलता है संगम युग में, ये बताना है दुनिया को। बाप रूप में भी मिलता है, शिक्षक रूप में भी मिलता है और सदगुरु के रूप में भी मिलता है। अभी इसका फायदा क्या होता है वो हम सब जानते हैं और इसके लिए दुनिया वालों को बता सकते हैं। इस संगम युग में दूसरी बात बाबा ने बताई, इस संगम युग में एक जन्म में 21 जन्मों का वर्षा प्राप्त होता है। बहुत शब्द इम्पोर्टेंट है वर्षा। दुनिया में वर्षा किसको मिलता है, जो बच्चे होते हैं उनको ही मिलता है, तो हम बाप के बच्चे भी है, इसके कारण 21 जन्मों का वर्षा हमको बाप से मिलता है। और जिस वर्षे में जन्म जन्म में कोई भी दुख अशांति नहीं होती है, और फिर इसके कारण संबंध क्या मिलता है, बाबा ने बहुत सुंदर संबंध की भी बात कही हुई है। कई बार कई बहन भाई हमको संबंध के बारे में उनको याद नहीं होता है, कहीं कहते हैं कि हमको, हम तो बाबा को मिले नहीं। एक बार एक माता जो है अभी तो बाप दादा से कह रही थी, बाबा हमने तो आपको, मैं तो आपको मिली नहीं। बाबा ने कहा बच्ची याद करो, तो हाँ बाबा आपको हमने कभी आपको देखा ही नहीं। तो बाबा ने उनको हंसी में कहा कि पिछले जन्मों में तुम बाबा से नहीं मिली थी, पिछले जन्मों में आप 84 जन्मों में इसी परिवार में रहना है, तो इसी परिवार में रहना है तो बाप दादा को, क्योंकि अभी तो बाप दादा को या साकार ब्रह्मा बाबा को भी मिले हुए ही थे, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि इसके कारण हमको परिवार मिलता है। जिस यह परिवार भी न्यारा और प्यारा होता है, और एक दो के द्वारा ईश्वरीय स्नेह, जो ईश्वरीय स्नेह सारे कल्प में नहीं मिलता है, और इसके कारण हम सर्व खजानों से भरपूर हो जाते हैं। परिवार की बात बहुत गुह्य बात है, और बाबा ने डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है डिवाइन फैमिली। परिवार खाली साधारण परिवार नहीं है, परंतु ईश्वरीय परिवार है, और ये ईश्वरीय परिवार है उसको कानून ने भी स्वीकार किया हुआ है परिवार के अंदर, क्योंकि राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंदर ये सब ऐसी बात है कि हम किसी से डोनेशन लेंगे तो हमको संस्था को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। तो इसके अंदर हमने उनके साथ आर्ग्यूमेंट किया कि हमारा डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है ये परिवार है, और परिवार के अंदर जैसे एक परिवार होता है, माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, तो बाप कमाई करके लाता है घर को चलाने के लिए, माँ को पैसा देते हैं या बच्चे को स्कूल की फीस देता है, क्योंकि डोनेशन नहीं होता है, परंतु अपनी जिम्मेवारी के आधार पर परिवार को चलाने के लिए कोई धन का सहयोग, कई अनेक प्रकार के सहयोग देते हैं। तो इस प्रकार से ये डिवाइन फैमिली, एक डिवाइन फैमिली का आप इंग्लिश डिक्शनरी में भी आप देखेंगे तो उसकी डेफिनेशन नहीं है, ये हमारे दैवी परिवार की ही डेफिनेशन है, डिवाइन फैमिली। और इस डिवाइन फैमिली के अंदर आप सबको मालूम रहे, इस डिवाइन फैमिली के अंदर ब्रह्मा बाप है और मातेश्वरी सरस्वती माँ है, और आपस में हम सब भाई बहन या भाई भाई, ये इस प्रकार से ये एक डिवाइन फैमिली है। बहुत सुंदर डिवाइन फैमिली की डेफिनेशन डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाबा ने हम बच्चों को दी हुई है। तो ये संगम युग में ही ये ईश्वरीय परिवार होता है, बाकी क्या होता है, अलग अलग जन्म में अलग अलग संबंध होते हैं। महाभारत में भी लिखा हुआ है, महाभारत सावित्री करके 5 श्लोक में महाभारत का सार व्यास मुनि ने लिखा हुआ है। इसके अंदर पहला ही श्लोक है, माता पितृ सहस्राणी पुत्र दार शतानी से, मतलब अनेक जन्मों में, किसी जन्म में हम माता बनेंगे, किसी के भाई बनेंगे, किसी का बाप बनेंगे, अनेक प्रकार के संबंधों के अंदर इस परिवार के अंदर ये 5 सृष्टि चक्र के अंदर हम आते हैं। तो ये 4 बातें जो है सबको पक्की याद करनी चाहिए। ज्ञान से क्या मिलता है, दुख अशांति से मुक्त बन जाते हैं। फिर योग से क्या होता है, शक्तियां मिलती है। फिर धारणा से क्या होता है, गुणों की प्राप्ति होती है। और संगम युग के खजाने से क्या मिलता है, हमको परमात्मा बाप, शिक्षक और गुरु के रूप में भी मिलता है, दैवी परिवार के रूप में भी मिलता है, और 21 जन्मों का वर्षा भी मिलता है, जिसके कारण हमें वहां पर दुख और अशांति आदि नहीं होंगे। ये सारा ही ज्ञान का सार बाबा ने पहले महावाक्य के पैराग्राफ के अंदर भर दिया हुआ है, हम बच्चों को दे दिया हुआ है। तो इसलिए, और फिर बाबा ने क्या कहा, बाबा ने भी नया पैराग्राफ में नई बात उसी खजाने के लेकर के बात कही कि क्या है, बाबा ने कहा है कि आज बाप दादा खजानों के मालिक हम कौन है, इन खजानों के कौन से खजाने, ज्ञान योग धारणा और संगम युग का समय, इन खजानों के मालिक और मालिक कौन होता है, इन खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं, खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। और इसके कारण बाप के दिल में क्या होता है, वाह बच्चे वाह, और हर बच्चा बाप का प्यारा बन जाता है। बच्चे तो बहुत है, बाबा ने कहा अलग अलग जगह पर बैठ करके मिल रहे हैं और बाप को देख भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा आज चारों ओर दूर दूर तक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख खुश हो रहे हैं। ये विज्ञान की उपलब्धि, हम जानते हैं कि बाबा को अलग अलग स्थानों पर बैठे हुए बाबा ऑनलाइन के रूप में भारत के अंदर हजारों सेवा केंद्रों के ऊपर बाबा को देख रहे हैं, विदेशों में भी बाबा को सब देख रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि दूर दूर तक माना विदेश तक भी जो है बाबा के बच्चों की जो है उसको देख खुश हो रहे हैं। और फिर बच्चे भी बाबा ने कहा है कि सदा इस प्राप्ति के नशे में खुश रहते हैं, और प्राप्ति के नशा भी है, और दूसरा बाबा ने बहुत एक सुंदर शब्द यूज किया हुआ है कि बाबा बच्चों को देख, बच्चों के सौभाग्य को देख खुश हो रहे हैं। फिर सिर्फ भाग्य नहीं परंतु सौभाग्य, सौभाग्य में 100 दो बार लिखने का मात्रा न करने पर एक बार करे तो 100 भाग्य हो जाता है। और सौभाग्य क्या कहा, जिसके पास 100 भाग्य है वो है सौभाग्यशाली। तो इसके कारण हमारे पास 100 भाग्य कैसे कैसे है उसकी एक लिस्ट बनानी चाहिए, मालूम रहना चाहिए कि हमारा इतना भाग्य हम बाबा के कारण हम बच्चों को भाग्य के रूप में, वर्ष के रूप में मिलता है। तो इस प्रकार से बाबा ने हम बच्चों के भाग्य की महिमा की। और बाबा ने क्या बोला आगे, देखो आज भी बाप ने सुना कि सभी खुशी खुशी से भाग करके पहुंच गए हैं। इस पर मुन्नी बहन ने कहा कि बाबा 26,000 से अधिक बहन भाई पहुंच गए हैं, वो तो आने वाले, फिर भी यहाँ पर बीके कॉलोनी में ऊपर ज्ञान सरोवर में पांडव भवन में आदि में रहने वाले इसको गिनती करें तो कल कम से कम 30-32 हजार बहन भाई इकट्ठे हुए थे। तो इसलिए यह भी समाचार सुना कि कई बच्चों को अंदाज ज्यादा होने के कारण टेंट में भी सोना पड़ा है। बाप दादा ने भी सभी तरह के टेंट में देखे, लेकिन इस ग्रुप की विशेषता है जो कोई भी है चाहे वो बड़ा है या छोटा है, विशेष व्यक्ति है या साधारण है, लेकिन बाप ने देखा टेंट, सब टेंट में नहीं सोते लेकिन खुशी के बिस्तर पर सोते हैं। कल बाबा ने खुशी का बिस्तर कहा हुआ है। इसके पहले पिछले साल में भी या 2 साल पहले बाबा आए थे और टेंट में रहे हुए थे, इसके लिए उनको क्या कहा मालूम है? बहुत सुंदर टाइटल उनको दिया था कि पट में सोने वाले पट राणा और पट रानी बन सकते हैं। पट रानी मालूम है ना? पट रानी किसको कहते हैं? हाँ, रामायण जिन्होंने पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि दशरथ को 3 रानियां थी, कौशल्या और सुमित्रा और कई कई। इसके अंदर जो कौशल्या जो थी वो पटरानी थी। तो इस प्रकार से बाबा ने पटराणा और पटरानी कर करके जो पट में सोए हुए थे, टेंट में सोए हुए थे, इसको बहुत सुंदर टाइटल दिया। कल उसको बाबा ने टाइटल दिया खुशी के बिस्तर पर सोए हुए थे। देखो बाबा हर एक बच्चे का कितना सुंदर पॉजिटिव दृष्टिकोण से उमंग उत्साह बढ़ाते हैं, ये हमको सीखना चाहिए। उमंग उत्साह सामने वालों का हम कैसे बढ़ावे। मैं आपको अपना एक अनुभव सुनाऊं। हम ब्रह्मा बाबा के साथ दिल्ली गए हुए थे, जो बाबा जो प्रदर्शनी जो थी दिल्ली में हुई थी उसको देखने के लिए, और दिल्ली वालों के पास दिल्ली के निमंत्रण पर गए थे, तो हम भी साथ में गए थे। हम साथ में गए तो वहां पर जैसे पहुंचे तो हमको ऑलराउंडर दादी जो है उन्होंने कहा कि अभी एक भाई जो है वो बेंगलोर जा रहा है। हमारी मातेश्वरी जो है ना उस टाइम पर बेंगलोर में थी। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने जल्दी जल्दी जो है ना मातेश्वरी जी के लिए एक पत्र लिख दिया कि हम यहाँ पर बाबा के साथ पहुंचे हैं और यहाँ पर बहुत अच्छी जिससे आर एस वर्मा जो है मेजर है उनके घर में रहे हुए हैं और अभी भी मुरली चल रही है बाबा के। इस प्रकार से सारा लिखा और ऑलराउंडर दादी से टोली का पैकेट लिया और जैसे मुरली पूरी हुई वो भाई को हमने मैं बाबा के पास लेके गया। बाबा को कहा कि बाबा ये पत्र और ये टोली आप मातेश्वरी जी को भेजो। तो बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही कि देखो ये रमेश बच्चा बाप के ऊपर भी बाबा से भी जीत पाई और बच्चे ने फौरन फटाफट मातेश्वरी जी को पत्र लिखा। वास्तव में मुझे लिखना चाहिए उसके बदले में बच्चे ने लिखा। मैंने बाबा को कहा उसमें क्या बड़ी बात है, एक साधारण पत्र लिखा है उसमें आप कहते हो कि बाप के ऊपर बच्चे ने जीत पाई। तो बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही कि ये आप बच्चों को सिखाने के लिए मैंने ये शब्द यूज किए हुए, तो ये तो बराबर है। हम बच्चे कोई बाप के ऊपर जीत नहीं पा सकते, परंतु एप्रिसिएशन करने के लिए कि सामने वाले की थोड़ी भी बात होती है, थोड़ी भी बात को एप्रिशिएट करो तो बहुत ही अच्छा होता है। कल के ही अखबार में मैं आर्टिकल रात को पढ़ रहा था तो एक है कि मैं बहुत अच्छा आर्टिकल था, उसमें कहा था कि अच्छे गेस्ट बनना हो उसके लिए क्या करना चाहिए कि किसके भी घर में जाओ एप्रिशिएट करो, खाना भी मिलता है उसको एप्रिशिएट करो, उनके घर का फर्नीचर जो है उनके बच्चों को इन सबको एप्रिशिएट करो। तो सामने वाला जिसके घर में आप मेहमान बनकर के जाते हैं उनका उनको आप एप्रिशिएट करेंगे तो वो आपको भी एप्रिशिएट करेगा और आपकी अच्छी रिश्ते खातरी करेगा। तो ये भी एक बाबा ने कल भी बताया, इस प्रकार से बाबा हम बच्चों को बता रहे हैं कि आर्ट ऑफ एप्रिशिएशन, ये भी खुशी की बात, खुश करना सामने वालों को और एप्रिशिएट कैसे करने का, कहने का हो तो भी कैसे कहा जाए, और इस प्रकार की बातें सीखनी चाहिए। हमारे गुजराती में एक कहावत है कि कहना होता है बहू को और तो नाम दिया जाता है बेटी का। इस प्रकार से इनडायरेक्ट हिंट देने का, इस प्रकार की बातें सीखनी चाहिए जिससे क्या होता है। दूसरा एक अंग्रेजी गुजराती लेखक ने लिखा हुआ है मखमल के चाय अगर जूता भी लगाए तो मखमल का लगा करके लगाओ तो सामने वालों को लगे भी नहीं और फील भी न हो, परंतु फिर भी आपका कार्य सिद्ध हो जाए। इसलिए बाबा ने कहा कि कोई छोटा भी हो बड़ा भी हो कोई भी हो खुशी के बिस्तर पर सोते हैं, और जो भी बिस्तर पर खुशी के बिस्तर पर सोए हुए हैं बाबा कहते हैं उसके दिल में क्या होता है, हाँ कि वाह बाबा वाह। और बाबा ने क्या कहा, बहुत अच्छी बात कर दी, सबके दिल में जो कुछ भी थोड़ी भी तकलीफ होगी ना, बाबा ने कहा जहाँ प्यार होता है वहाँ क्या होता है, तकलीफ नहीं होती है। और बाबा ने कहा कि सबके चेहरे पर खुशी नजर में आ रही थी और सभी उमंग उत्साह से क्लासेस जो भी है कर रहे थे, बाप दादा सब सुनते हैं। ये बाबा ने बहुत अच्छी एक बात कह दी, क्लासेस होते हैं आदि जो भी होता है, बाबा ने क्या बोल दिया, बाप दादा सब सुनते हैं। इसलिए ऐसा आप करना, यहाँ कौन ध्यान रखता है कौन देखता है, ऐसी कईयों के मन में फीलिंग है कि यज्ञ में तो जाते हैं पर तो कौन हमारा ध्यान रखता है कौन ऐसा होता है। इस सबका जवाब बाबा ने कल दे दिया, बहुत सुंदर एक महावाक्य में जवाब दे दिया कि बाप दादा सब सुनते हैं। सुनते हैं तो क्या होगा, उनके आधार पर जो भी कार्य होता है वो करते हैं। फिर बाबा ने जो जोन हेड्स आए थे उनको भी उठाया और बाबा ने कहा कि आप लाए हो भाई बहन सब खुश है, इसे उनसे भी पूछा और फिर उसको मुबारकबादी भी दिया। और फिर बाबा ने बहुत सुंदर एक बात कही कि जो भी पट में सोने वाला यहाँ इतना घमसान होता है, भीड़ होती है, उसके कारण बाबा ने कहा बच्चों की सहन शक्ति देख हर एक बच्चों को बाबा पदम गुना प्यार देते हैं। ये बहुत बड़ी बात है आज की दुनिया में, पहले जमाने में ज्वाइंट फैमिली आदि जो थे उसके अंदर क्या था, सहन शक्ति के आधार पर सब आपस में प्यार से रहते थे, आज वो सहन शक्ति कम हो गई, उसके कारण क्या होता है इंडिविजुअलिस्टिक टेंडेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है। और इसलिए बाबा ने कल ये शब्द यूज किया सहन शक्ति, और सहन शक्ति के उसके जो है उसके कारण क्या होता है, बाबा पदम गुना प्यार देता है। तो क्या करना चाहिए, योग में 8 शक्तियां है ना, उसके अंदर सबसे ज्यादा में ज्यादा इसी शक्ति की जरूरत है, सहन शक्ति, और दूसरी शक्ति है परखने की शक्ति। बाबा की एक मुरली है ये दिन दो शक्तियों के ऊपर, अव्यक्त बाप दादा की मुरली है, सहन शक्ति और परखने की शक्ति। तो इसलिए बाबा ने कहा सहन शक्ति का बच्चों ने बहुत अच्छा रिकॉर्ड दिखाया हुआ है। कोई बीमार, बाबा ने कहा कोई साधारण कोई बीमार होता है वो तो होता ही रहता है, उसमें क्या बड़ी बात है, परंतु स्पेशल उन बच्चों की सहन शक्ति का इनाम के रूप में बाबा ने क्या दिया, दिल का अति प्यार दे रहे हैं, दिल का अति प्यार दे रहे हैं। ऐसा कर करके बाबा की बाबा ने मुरली का आगे का कारोबार किया और इसके अंदर पूछा कि अभी आगे क्या करना है, तो अभी बताया गया सेवा का टर्न बंगाल बिहार आसाम ओडिशा नेपाल और तमिलनाडु का है और 18,000 इन जोन से आए हुए हैं। और उसके आधार पर फिर बाबा ने बताना शुरू किया कि बाप दादा हर बच्चे को तीव्र पुरुषारथी के रूप में देखना चाहते हैं। पुरुषारथी तो है, अब बाबा क्या देखना चाहता है, कल बाबा ने अपनी दिल की इच्छा बता दिया कि हर बच्चे को बाबा अभी तीव्र पुरुषार्थी, साधारण पुरुषार्थी नहीं तीव्र पुरुषार्थी, आगे बाबा ने बोला हुआ है तीव्र पुरुषार्थ का क्या अर्थ है, चलने वाले नहीं परंतु उड़ने वाले, बाबा ने आगे कहा हुआ है तीव्र पुरुषार्थी का, फिर बाबा ने डेफिनेशन भी दिया हुआ है। ये सारी ऐसी याद होनी चाहिए कि ज्ञान के हिसाब से तीव्र पुरुषार्थी किसको कहा जाए, कोई ऐसे आपसे सवाल पूछे तो आपको कह देना चाहिए कि बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी की डेफिनेशन दिया हुआ है। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात देखिए हम सबको तीव्र पुरुषार्थी बनना है ना, जिसको तीव्र पुरुषार्थी नहीं बनना है वो हाथ खड़ा करे, सबको तीव्र पुरुषार्थी बनना है ना, क्योंकि बाबा ने भी कह दिया कि बाबा बच्चों को तीव्र पुरुषार्थी के रूप में देखना चाहते हैं। तो सबकी इच्छा है तीव्र पुरुषार्थी बनना, तो बाबा ने तीव्र पुरुषार्थी की डेफिनेशन दिया हुआ है। सब इसका डेफिनेशन है, सब सब्जेक्ट में अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट हो। और बाप दादा भी यही चाहते हैं कि अभी समय अनुसार तीव्र पुरुषार्थी के लिए क्या बताते हैं बाबा, अभी समय अनुसार आप ये नोट करिए, समय अनुसार समय अनुसार हर बच्चे के चेहरे पर शक्तियां और खुशियां नजर आनी चाहिए, नजर आनी चाहिए तीव्र पुरुषार्थी के चेहरे पर, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया में दुख तो बढ़ना ही है। और ऐसे दुख के समय पर आपका जो खुशनुमा और दिव्य गुण जो हमारे राजू भाई ने ऊपर टाइटल मुरली के सार में लिखा हुआ है, खुशनुमा और दिव्य गुण संपन्न, दिव्य गुण संपन्न चेहरा देख उनको भी थोड़े समय के लिए खुशी का अनुभव हो। अब अनेक प्रकार की सेवाएं जो हम करते हैं, कोई ज्ञान से करते हैं, ये योग से करते हैं, इस प्रकार से सेवा करते हैं। कल बाबा ने सिखा दिया अभी अपना कौन सा चेहरा, बाबा ने कहा खुशनुमा और दिव्य गुण संपन्न चेहरे उनसे सेवा करनी चाहिए। बाबा सेवा के भी अनेक 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 स्वरूप हम बच्चों को सिखा रहे हैं। कल की मुरली का कोई अगर सार मुझे पूछे तो कल की मुरली के अंदर बाबा ने चेहरे से सेवा कैसे करनी चाहिए ये बाबा ने सिखाया हुआ है कि हमारा दिव्य गुण संपन्न और खुशनुमा चेहरा उनके द्वारा सेवा करनी चाहिए। और बाबा ने चेहरे से क्या हो सकता है, चार बातें कही है, चार। एक, इनसे ईश्वरीय स्नेह, क्या होता है ईश्वरीय स्नेह, फिर ईश्वरीय प्यार। ये सब जैसे डॉक्टर होता है ना, उसको मालूम रहता है ये टाइफाइड है, टाइफाइड की दवा ये है, ये मलेरिया है उसकी दवा ये है। इस प्रकार से हम बच्चों को ये मालूम रहना चाहिए ईश्वरीय स्नेह और ईश्वरीय प्यार, इसमें कोई फर्क है। इसके लिए विचार सागर मंथन करना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा ही कहता हूं कि हर एक सेंटर के ऊपर स्टडी सर्कल होना चाहिए और स्टडी सर्कल के अंदर इनकी गहराई में जाना चाहिए। जैसे यहाँ ये मैं जो क्लास कराता हूँ ये समझो कि स्टडी सर्कल के रूप में है। इस प्रकार से सेवा केंद्रों पर भी होना चाहिए और हमें मालूम होना चाहिए ईश्वरीय स्नेह और ईश्वरीय प्यार के बीच में क्या फर्क है, कि दोनों एक ही समान है। अगर एक समान होता तो बाबा क्यों अलग अलग शब्दों के द्वारा अलग अलग बातें करता। तो इसलिए बाबा का क्या लक्ष्य है, क्या बाबा बताना चाहते हैं, वो डिफरेंस भी हम बच्चों को मालूम होना चाहिए कि ईश्वरीय स्नेह और ईश्वरीय प्यार। और फिर तीसरी बात थी हिम्मत बढ़ाने वाला प्यार। हिम्मत बढ़ाने वाला प्यार वो क्या हो सकता है, कौन से ऐसा प्यार है जिसके आधार पर हमारी हिम्मत बढ़ सकती है। आप समझा, पहला ईश्वरीय स्नेह, दूसरी बात बताई ईश्वरीय प्यार, तीसरा बताया हिम्मत बढ़ाने वाला प्यार, और चौथी बात है खुश रहने का। हिम्मत तो होगी परंतु खुश रहने वाला मुख हमारा नहीं होगा तो क्या होगा। तो इस प्रकार से हमारे चेहरे से ये चार बातों का दुनिया को अनुभव होना चाहिए। कौन सी चार बात, अरे कोई ये याद रहे, जैसे दादी जानकी ऐसे गिनती करके गिनती बताती है, इस प्रकार से बाबा भी प्रोफेसर बनकर के बाबा ने कल ये बात बताई चार बातें कि हरेक के चेहरे से क्या होगा, ईश्वरीय स्नेह, फिर ईश्वरीय प्यार, फिर हिम्मत बढ़ाने वाला प्यार, और चौथा खुश रहने का अनुभव। ये चार बातें जो है आपके चेहरे से सामने वाले को मालूम पड़ना चाहिए। इसको कहते हैं मुखवटा, हमारे फेस, हमारे फेस के ऊपर ये चार बातें आनी चाहिए। फिर बाबा ने हम बच्चों के नाम पर कमियां जो हो जाती है उसके बारे में कहा कि कई बच्चे कहते हैं कि हम खुश तो रहते हैं लेकिन कर्मयोगी जीवन में थोड़ा सा कर्म में फर्क पड़ जाता है। तो ये बाबा ने कहा कि इसके आधार पर क्या होगा, तो बाबा ने कहा कर्मयोगी जीवन में थोड़ा सा कर्म में फर्क पड़ जाता है। अभी कर्म में फर्क नहीं आना चाहिए। समाज में दुनिया में जाते तो फर्क नहीं आना चाहिए। क्यों? कभी ये फर्क नहीं आएगा, वो बाबा ने कहा है। बहुत अच्छी बात सावधानी दिया हुआ है कि कर्म करते ही सदा अटेंशन रहे कि मैं कर्म योगी आत्मा हूं। कर्म करने से पहले यही ध्यान में रहना चाहिए कि मैं कर्म योगी आत्मा हूं। शरीर को चलाने वाली और शरीर का मालिक हूं। तो हर समय चाहे कर्म करो चाहे नहीं करो, लेकिन कर्म करने समय भी यही सोचो कि मैं कर्म कराने वाली आत्मा हूं। और आत्मा भी कौन सी आत्मा हूं? मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं साधारण आत्मा नहीं हूं। अपने को कल से बाबा ने कह दिया कि मैं साधारण आत्मा नहीं हूं, परंतु क्या हूं? बाबा ने कल बहुत सुंदर काबिता हम योग में करते थे, मैं आत्मा हूं परमात्मा की संतान हूं, मैं आत्मा हूं परमात्मा की संतान हूं, इस प्रकार से करते थे। बाबा ने उसमें अभी एडिशन कराया कि मैं बाप की लाडली बच्ची या बच्चा हूं। आज से ये योग में करेंगे सब। मैं आत्मा हूं, मैं आत्माओं के बदले में क्या करेंगे? मैं परमात्मा बाप का लाडला बच्चा हूं या लाडली बच्ची हूं। ये एक शब्द लाडली शब्द ऐड करेंगे सब। लाडली बच्ची हूं या लाडला बच्चा हूं, बाबा ने क्या बता दिया? कल से हमारे योग में ये बात होनी चाहिए। कल से क्या आज से ही कर सकते हो कि मैं बाप की लाडली बच्ची या बच्चा हूं। और मैं क्या हूं? मैं परमात्मा की प्यारी हूं। इस प्रकार से हम कौन है? हम परमात्मा के प्यारे हैं। हम मालिक होके इस शरीर को चलाने वाला हूं। मैं और क्या हूं? मैं मालिक होकर के इस शरीर को चलाने वाला हूं। और क्या है? सदा हमारे दिल में बाप की याद समाई हुई है। तो इसलिए बाबा ने कहा हर एक चेक करो कि कर्मयोगी बनकर के हम कर्म कर रहे हैं। आज से ये सावधानी बाबा ने बता दिया सबको। कोई भी कर्म, चाहे खाने का, चाहे पीने का, चाहे स्नान पानी करने का आदि जो भी है, बाबा ने बताया हुआ है। एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा है स्नान करने के समय पर क्या करो? मैं ये शरीर रूपी रथ जो है उसको स्वच्छ कर रहा हूं। मैं स्नान नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं इस शरीर रूपी रथ को, मैं आत्मा इस शरीर रूपी रथ को स्वच्छ कर रहा हूं। भोजन करने के समय भी इस प्रकार के याद रहनी चाहिए। कर्म योगी हूं और मेरा बाप से योग है, इस प्रकार से बाबा ने कहा। तो क्या होगा? बाबा ने कहा कर्म योग के करने के समय पर एक स्लोगन याद रखो। कल बाबा ने बहुत सुंदर बातें कही, थोड़े समय में भी आए हैं, थोड़ी मुरली में भी बहुत कुछ कह दिया कि सदा ये याद रखो। क्या? कि मुझे फॉलो फादर करना है। मुझे क्या करना है? फॉलो फादर करना है। और क्या करना है? तो दुनिया के सामने प्रसिद्ध करना है कि बाप हमारे साथ है। कर सकते हैं। सेवा का लक्ष्य क्या कर दिया बाबा ने? कि फॉलो फादर करना है और दूसरा दुनिया के सामने सिद्ध करना है कि बाप हमारे साथ है। वो सिद्ध कर सकते हैं ना? कितना एक सिंपल महावाक्य में सेवा का लक्ष्य बता दिया कि बाप हमारे साथ है। और इसलिए क्या करेंगे? जो भी अभी इसके लिए बाबा ने कहा कि अभी अभी अपने स्थान पर जाकर के अपने चेहरे से ऐसे खुशनुमा चेहरे का अनुभव कराना, क्योंकि आज की दुनिया में खुशी अभी कम होती जाती है और आपका चेहरा उनको खुशी का अनुभव कराए। क्योंकि आगे चल करके बाबा ने कहा दुख और अशांति दुनिया में बढ़नी है। और बहुत अच्छी भविष्य की सेवा का प्लानिंग बाबा ने बता दिया, भविष्य की सेवा का, कि समय आगे चल करके इतना नहीं मिलेगा कि कोई सुनने हमारा ज्ञान सुने या कोई कोर्स कराने को आएगा, लेकिन आपका चेहरा उनों को खुशी का अनुभव करावे। ओ बाबा ने सबको सवाल पूछा, सबको पूछा और हाथ खड़ा करवाया कि क्या ऐसा अपने चेहरे से ऐसी सेवा कर सकते हो? करेंगे ना? सबने हाथ खड़ा किया था। कि ऐसे हमारे चेहरे से सेवा करने का, ये इतनी सुंदर बात है। अनपढ़ भी चेहरे से तो कर सकते हैं, हर एक के पास अपना चेहरा तो है, अपने चेहरे के द्वारा खुशी खुशी से, खुशी का चेहरा जो है सब कहेंगे अरे आपको क्या मिला क्या मिला क्या मिला, इसके आधार पर सेवा हो सकती है। तो इसलिए बाबा ने कहा अगर इतने एक एक चेहरा जगह जगह से आया, खुशी बांटने का लक्ष्य रखे और सदा खुश, बीच में बाबा ने कहा सदा खुश, फिर बाबा ने करेक्शन दिया कभी कभी नहीं, क्योंकि खुशी की यही विशेषता है, जितनी ये चीज जो खुशी औरों को देंगे इतनी बढ़ती रहेंगी। बाबा ने फिर एग्जांपल दिया कि आपके पास दो चीज होंगी, दो चीज होंगी उसमें आप भाई किसी को एक चीज दे देंगे तो आपके पास एक रहेंगे, पर खुशी ऐसी है जितनी आप बांटेंगे इतनी वो बढ़ती जाती है। और बाबा ने आगे बताया तो सभी आत्माओं को अभी खुशी बांटो तो डबल फायदा होगा, आपकी भी खुशी बढ़ेंगी और उनकी भी बढ़ेंगी। मैंने कल बाबा को हंसते हंसते कहा बाबा आज आपने फायदे का इकोनॉमिक्स सिखाया, फायदे का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स सिखाया कि क्या होगा, इस प्रकार से खुशी खुशी से चेहरे के द्वारा सेवा करेंगे तो डबल फायदा होगा। सब चाहते हैं ना फायदा, कोई नुकसान चाहता है, किसी को नुकसान की जरूरत हो तो हाथ खड़ा करे, सबको फायदा ही चाहिए। तो बाबा ने कहा दो डबल फायदा होगा, क्या, एक तो आपकी भी खुशी बढ़ेगी और सामने वाला जो है उसकी भी खुशी बढ़ेगी। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा, आज का ये विशेष काम याद रखना, क्या याद रखना, खुशी बांटनी है, आपको खुशी बांटनी है। फिर बाबा ने बहुत अच्छी और बात कही है कि अगर मानो आपके आपके पास से खुशी चली जाती है, कोई ना कोई बात के कारण खुशी चली जाती है, तो आप क्या करो, आपकी किसी न किसी बात के आधार पर खुशी चली गई तो आप क्या करो। बाबा ने एक तरीका बताया है कि अगर आपकी खुशी चली जाए तो आप क्या करो, बाप के खुशी लेकर आप खुश रहो, बाप खुशी देने का किसी का सौदा करने के लिए खुशी देने के लिए तैयार है, खाली क्या है हमको ये विधि आनी चाहिए कि हम बाप से खुशी कैसे ले और दूसरे को भी खुशी दे। और इसलिए बाबा ने क्या बताया, कल बाबा ने पुरुषार्थ का लक्ष्य बताया, पहले भी सुनाया कि बाबा कहते हैं, अब पहले भी बताया ना तीव्र पुरुषार्थी बनो, तो बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी बनो, अर्थात फिर बाबा ने तीव्र पुरुषार्थ की दूसरी डेफिनेशन दिया कि अभी चल रहे हैं नहीं परंतु उड़ रहे हैं, चल रहे ऐसा नहीं परंतु उड़ रहे हैं। हम कईयों के अनुभव सुनते हैं ना तो वो वही कहते हैं कि मैं 40 साल से बाबा के ज्ञान में चल रहा हूं। हाँ तो हमको हंसी आती है कि 40 साल से भी पुरुषार्थ के आधार पर खाली चल ही रहा है तो क्या होगा, बाबा ने भी कहा चल नहीं रहा है परंतु उड़ रहा है। चलना और उड़ना तो मालूम है ना, हमारी गति जो है और प्रगति जो है उसकी स्पीड जो है हमको बढ़ानी है, उड़ना है, क्योंकि बाबा ने सावधानी दे दिया हुआ है कि चल करके चलने वाला जो है समय तक या समय से पहले लक्ष्य पर मंजिल तक पहुंच नहीं सकेगा, उसका बोर्ड लग गया है। क्या बोर्ड लग गया है, जो चलकर चलने का पुरुषार्थ करेगा वो समय पर या समय से पहले अपनी मंजिल जो है सर्वगुण संपन्न बनने की जो बात है वो मंजिल तक पहुंच नहीं सकेगा, इसके लिए अपनी स्पीड बढ़ानी है, उड़ती कला वाले बनो या दौड़ती कला वाले बनो। बाबा ने तो कल उड़ती कला ही कर दिया, दौड़ती कला भी निकाल दिया, अब हमें उड़ती कला संपन्न बनना पड़ेगा। फिर क्या होगा, कभी बाबा ने ये शब्द कहा कि कभी 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 हम खुश रहते हैं, बाबा ने कहा ये कभी कभी शब्द यहां छोड़ करके जाना, और बाबा ने सीधा ही सवाल पूछा ये कभी कभी जो है हाँ ये बात जो है कि कभी कभी हम खुश रहते हैं, ये कभी कभी शब्द यहाँ छोड़ करके जा सकते हो। हाँ बाबा ने क्या कहा, हाथ उठाओ जो छोड़ेंगे, कभी कभी शब्द यहाँ छोड़ेंगे, उनके लिए बाबा ने हाथ उठवाया। और बाबा ने फिर क्या कहा, ऐसे जो सदा खुश रहने वाले हैं उसको मुबारक दे रहे। और कहा कि फिर आज से कभी भी कभी कभी शब्द नहीं रहना, सदा खुश रहना। और फिर बाबा ने बहुत सुंदर, बाबा पक्का कराता है पक्का, बाबा ने क्या कहा, सदा खुश रहेंगे ऐसी हिम्मत है क्या? बाबा ने सवाल पूछा, बाबा पक्का बिजनेसमैन भी है, तो सदा खुश रहेंगे ऐसी हिम्मत है। और फिर बाबा ने क्या सवाल पूछा, कि जो समझते हैं कि दुख और अशांति जो भी थोड़ी कभी कभी आती है, वह इस बारी हम यहाँ छोड़ कर के जाएंगे, साथ नहीं ले जाएंगे, इतनी जो हिम्मत समझते हैं वो एक नहीं परंतु दो दो हाथ उठाओ, ऐसा कहा कल बाबा ने। तो आप में से जिन्होंने कल दो दो हाथ उठाए होंगे वो हाथ को खड़ा करें। कहीं ऐसे भी है देखो, दो हाथ नहीं उठाते, एक हाथ उठाते, मतलब आधा उठाया आधा नहीं उठाया। ठीक है, देखना हाँ, सब बाबा देख रहे हैं, बाबा ने कहा, बाबा सुन भी रहा है तो देख भी रहा है, तो इसलिए जिन्होंने हाथ खड़ा किया, डबल हाथ खड़ा किया, उनको बाबा क्या करेंगे, पकड़ेंगे, कहेंगे देखो बाबा के सामने तो डबल हाथ उठाया, तो इसलिए। और बाबा ने फिर कह भी दिया, बाबा ने रास्ता भी बता दिया कि हिम्मत है बच्चे तो मदर है बाप तो है ही, हिम्मत है बच्चे तो मदर है बाप तो है ही। मैंने बाबा को उसी टाइम पर बाबा को कहा, बाबा हमारे कई बहन भाई जो है ना, उन्होंने उनका जो गणित जो है, उनका जो अर्थशास्त्र है वो अलग है। मैं बताऊं, कहीं बाबा के बच्चों का अर्थशास्त्र या गणित गलत है या उल्टा है, कि हिम्मत है बाप तो मदद है बच्चे। आप देखना, आप अपने जीवन को भी देखना, हिम्मत है बाप है तो मदद है बच्चे, यही हमारा व्यवहार होता है। ऐसा नहीं है बाबा ने जो कल कहा, हिम्मत है बच्चे तो बाप तो मदद में है ही। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि जो इतना बड़ा जोन आया हुआ है, थोड़ी आने में तकलीफ तो होती है, ट्रेन में तकलीफ होती है कई जगह से, क्योंकि रिजर्वेशन नहीं मिलता है, कई ऐसे बातें होती है। हमारे बॉम्बे से ही एक भाई आया था, वो रेलवे स्टेशन पर भी पहुंचा तो बताया रिजर्वेशन नहीं है, तो फिर क्या किया, वो घर पे गया और अपने कार थी, वो कार उठा करके कार में भी यहाँ आ गया। ऐसे कई अनेक प्रकार के साधनों के व्यवहार के आधार पर यहाँ आए हुए हैं। अच्छा बाबा ने फिर बताया, हर एक एक जोन को उठाया और तमिलनाडु जोन के लिए कहा, उसको वरदान दिया कि कोई भी कार्य करो, ये तमिलनाडु को नहीं सबको दिया हुआ है।
शिव पिता फिर से आया।
शांति। कल तमिलनाडु जोन के कनेक्शन से जो बात कही वो सबके लिए है। बाबा ने क्या कहा, बहुत अच्छी बात कही, वो सबको करनी चाहिए। बहुत सिंपल बात है, विशेष वरदान रह रहे सदा कोई भी कार्य करो, ये वरदान है। अच्छी से इसको ध्यान से सुनिए, सदा कोई भी कार्य करो तो कार्य करने से पहले बाप से स्पेशल कार्य की सफलता का वरदान लेकर के बाप दादा के वरदानी बनकर के वह कार्य करो तो सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार हो जाएगा। और फिर बाबा ने सावधानी भी दिया कि कार्य करने के बाद याद नहीं करना, पहले वरदान देकर के फिर कार्य करो तो सफलता आपके साथ हो जाएगी। ये बाबा ने बात कही है। कोई भी कार्य, कोई नौकरी करता है तो नौकरी में भी जाएगा तो टेबल पर तो पहले बैठेगा ना। कोई भी कार्य, माताएं खाना पकाने का काम शुरू करेंगे, या जो भी कार्य करो उस कार्य को करने से पहले हम बाबा को 3 मिनट याद करके करो। और आज का तो बहुत कॉमन हो गया है। मैं समझता हूँ यहाँ जितने भी बैठे 90% बहन भाइयों के पास मोबाइल फोन तो होगा। यहाँ जितने बैठे जिनके पास मोबाइल फोन नहीं हो हाथ खड़ा करें, थोड़े ही है, 5% भी नहीं है। बाकी सबके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन के अंदर गीत रिकॉर्ड कर सकते हैं, गीत रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई भी कार्य करो उसके पहले 3 मिनट बाप को याद करें। हमको विदेश में 71 में गए ना, तो बाबा ने हम बच्चों को यही कहा था कि कोई भी कार्य करो उसके पहले बाप को याद करके करना। और उसके बहुत फायदे हुए, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, नहीं तो खाली बाप को याद करके काम करने से क्या शुरू हुआ, क्या फायदा हुआ, बहुत है। हमारे कई बहन भाई हमारे जनसा जो है वहाँ की ऑन्कोलॉजिस्ट है अमेरिका टेक्सास में मिलिट्री की, वो बता रही है कि जैसे वो वहाँ पहुँचती अपने टेबल के ऊपर पहले बाप को 5 मिनट याद करती है, उसके बाद कारोबार करते हैं। अपना जो जज है वो जज साहब भी कोर्ट में जाने से पहले बाप को याद करके फिर कोर्ट में जाते हैं। हमारा एक भाई जो है डॉक्टर है, सर्जन है, और सर्जन के रूप में ऑपरेशन करता है उसके पहले बाप को याद करके कार्य करता है। इन सब प्रकार के सबका अनुभव यही है कि बाप को याद करके कार्य करने से क्या होता है, सफलता। बाबा ने कल कहा सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार। इसलिए बाबा ने कहा कोई भी कार्य शुरू करो, कोई भी कार्य, जैसे भोजन करते उसके पहले बाप को याद कर सकते हैं, ऐसे हर कार्य, जो भी कार्य करो, चाहे नौकरी वाले नौकरी शुरू करें, धंधे वाले धंधा शुरू करें, कोई भी आप अपनी कुर्सी पर जाकर के बैठ करके पहले बाप को याद करके कार्य शुरू करो। ये बाबा ने कल वरदान दिया हुआ है, और इस वरदान को अमल में लाएंगे, प्रैक्टिकल करेंगे उसको तो क्या होगा, बाबा का वरदान है कि सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार होगा। हो सकता है जो कि समझते हैं कि हम बाबा को याद करेंगे और याद करके ही कार्य करेंगे, वो हाथ खड़ा करें, देखना है संभाल करके हाथ खड़ा करना बहुत मुश्किल है। कई बार कहते हैं अरे फुर्सत नहीं है और भूल जाते हैं बाप को। इसके बदली में बाप को याद करके ही कार्य करना शुरू करेंगे तो बहुत कुछ होगा। ये बहुत फायदे हैं। और आप हमको पीछे लिखना, बॉम्बे अबू में लिखना रमेश भाई, हाँ बाबा ने जो कल ये वरदान दिया उस वरदान को हमने जीवन में अपनाया तो इससे क्या हुआ, ये हमको लिखना अपना अनुभव। और अच्छे अच्छे अनुभव होंगे ना तो हम उसको एक किताब बना करके बताएंगे कि बाप को याद करके कार्य शुरू करने का जो बाबा ने जो प्रॉमिस किया हुआ है कि सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार होगा, ये बात सिद्ध हो सकती है। मैं आपको एक अनुभव बताऊं, ये आपको बाप को याद करने का अनुभव हो जाएगा ना तो क्या होगा, हमारे दो भाई जो थे ट्रेन में यहां से निकले आबू से और थोड़े आगे गए तो जो पिलर्स होते हैं ना, एक पिलर के साथ एक टकराया, उसको बाप की मदद नहीं मिली। और दूसरे पिलर में दूसरा भाई एक पिलर के साथ टकराया, उसको बाप की मदद मिली। तो मैंने बाबा को पूछा, बाबा आपने एक को मदद किया एक को नहीं किया, उसका कारण क्या है? बाबा ने कहा जो दूसरा जो है ना वो पिलर के साथ टकराया उसी टाइम पर वो बाबा करके मुझे याद किया, वो बाबा करके मुझे याद किया। तो जब मुझे याद कोई करता है तो क्या है, मेरी फर्ज होती है मैं मुझे जो याद करता है उसको मुझे मदद करनी चाहिए। ऐसे बहुत है मिसाल, ऐसे बहुत मिसाल है कि जिन्होंने बाप को याद करने की एक प्रैक्टिस डाल दी हर बात में। अरे कहीं एक भाई तो है वो पानी देखता है ना तो पानी वही उसको दृष्टि देख करके बाप को याद करके पानी पीता है। ऐसे कईयों ने कई प्रकार के जीवन के अंदर दैनिक जीवन में बाप को याद करने की हैबिट डाल दी है। कल बाबा ने यही कहा, फिर से मैं बाबा की बात पढ़ता हूँ कि सदा कोई भी कार्य करो, बाबा ये विशेष वरदान देते हैं कोई भी कार्य करो तो कार्य करने से पहले बाप से स्पेशल कार्य की सफलता का वरदान लेकर के बाप दादा के वरदानी बच्चे बनकर के वह कार्य तो करो तो सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार हो जाएगा। परंतु कार्य करने के बाद याद नहीं करना, बाबा ने कहा पहले वरदान लेकर के फिर कार्य करो तो सफलता आपके साथ हो ही जाएंगी। ये बात पक्की है, बहुत सिंपल बात है ना, सरल बात है, कोई कठिन बात है? कोई भी कार्य करो उसके पहले बाप को याद करके करो। कोई भी कोई एक मिनट भी याद करे, कोई तीन मिनट याद करे, जो भी करे। कई हमारे पहचान वाले हैं बाबा के बच्चे, इन्होंने अपने मोबाइल के अंदर ये ट्रैफिक कंट्रोल के भी गीत डाल दिए हैं, तो 12 बजे ये गीत बजेगा जो भी हर ट्रैफिक कंट्रोल का, तो पूरा ही ट्रैफिक कंट्रोल को फॉलो करते हैं। इसलिए क्या करते हैं, बाबा ने कहा कि अच्छे अच्छे उमंग में समय आए हैं तो इस प्रकार से उनको बाबा ने बताया, एक नई विधि कल बताई सिखाई है सबको। और इस विधि के साथ बाबा ने कहा यह विधि वरदान के रूप में, स्पेशल वरदान के रूप में, विशेष वरदान के रूप में बाबा कह रहे हैं। सबको कहा, तमिलनाडु तो निमित्त है परंतु सबको कहा, सब ये कर सकते हैं। कोई ऐसा समझता है कि तमिलनाडु को ही कहा तो इसलिए ही वरदान मिला और हमको नहीं मिला है, ऐसा कोई समझता है? सब करेंगे ना इसके आधार पर। फिर नेपाल वालों को भी कहा कि सेवा का उमंग अच्छा है, बाप दादा सदा के लिए सहयोग देंगे आगे बढ़ने का, वरदानी बनने का मुबारक दे रहे, बढ़ते रहो बढ़ाते रहो, बाप दादा साथ है। फिर बिहार बंगाल वालों को भी कहा कि यह जोन में भी अच्छी सेवा हो रही है, बाबा खुश हैं। और साथ साथ सदा देखो बाबा ने अपना गुह्य बातें सरलता से बता देते हैं कि बाप दादा सदा अमृत वेले चक्कर लगाते रहते हैं, सदा अमृत वेले चक्कर लगाते रहते हैं। एक सेंटर का एक भाई जो है ना उसने अपने बाबा को बताया, रमेश भाई हमारे पास मुसीबत हो गई। मैंने कहा क्या हो गया? कि ये बाबा चक्कर लगाते हैं ना तो क्या हो गया? तो कहा कि एक दिन मैंने बाबा को कहा रात को सोने से पहले कि बाबा हमको कल सुबह कोई एक काम करना है, जल्दी जाना है, इसलिए 4 बजे मुझे उठाना। देखो एक भाई का अनुभव है, मेरे पास लिखत में वो अनुभव पड़ा हुआ है। तो उसने बाबा को कहा कि मुझे 4 बजे उठाना। दूसरे दिन ठंडी के दिन थे, ये मतलब विंटर था, तो बाबा 4 बजे उसको उठाने के लिए आए। बाबा ने उसको कहा बच्चे उठो, बच्चे उठो। तो उसने उठने के बदले में वो रजाई जो है ना, ओढ़ने की रजाई ठंडी के, वो और ही सिर पर डाल दिया। तो देखो बाबा कितना रहमदिल है। बाबा आगे चलने लगे, बाबा ने कहा कि शायद बच्चा बहुत थका हुआ है इसलिए उठता नहीं है। देखो कितना पोजीशन, मेरा जैसा हम कहेंगे देखो मुझे बुलाया और उठता नहीं है, ये पागल है, मूर्ख है, हम ऐसा बोल देते थे। बाबा ने क्या कहा कि शायद बच्चा बहुत थका हुआ है इसलिए उठता नहीं है। तो ये उसने क्या होता है, ये ब्रह्मा बाबा के महावाक्य जो है, आवाज जो है ना, अभी आप बच्चों को, हम बच्चों को मुरली के द्वारा सुनने को नहीं मिलता है। पहले जो है ना गुरुवार के दिन खास ब्रह्मा बाबा के साकार मुरली की टेप रिपीट होती थी, इसीलिए रिपीट होती थी ताकि सबको मालूम रहे ब्रह्मा बाबा का आवाज भी, जैसे गुलजार दादी का आवाज। हम लोग इसलिए एक दिन पहले, जैसे अभी भी 20 तारीख को बाबा का कल अवतरण हुआ, 19 तारीख को गुलजार दादी का क्लास जरूर रखते हैं, इसके लिए कि गुलजार दादी किस प्रकार से बोलती है, उनका कैसे आवाज होता है, और अव्यक्त बाप दादा उनके तन के द्वारा बोलते हैं, तो उसमें क्या फर्क है वो आप नोट कर सकते हो। तो उस प्रकार से पहले ब्रह्मा बाबा का मुरली का आवाज आता था, इसके कारण क्या हुआ, वो भाई ने वो आवाज बाबा का सुन लिया, और सुना हो तब उसने देखा तो ब्रह्मा बाबा जा रहे हैं, और बाबा ने पहले ही बोल दिया कि शायद बच्चा बहुत थका हुआ है। तो इस प्रकार से बाबा का साथ और बाबा के साथ के आधार पर अपने कार्यों में बाबा का सहयोग लेने की एक कला है, इस कला को सीखना चाहिए, और जो इस कला को सीखेगा ना उसको बाप दादा की मदद सदा ही सतत मिलती रहती है। ये एक कला सीखना है कैसे बाप को हमारा सदा साथी बनावे। परमात्मा माता पिता जो है ना, संस्कृत में श्लोक, माँ बाप भी है परमात्मा, हमारा बाप भी है, सखा माँ भी, भाई भी है और सखा भी है, साथी भी है। तो परमात्मा को साथी बनाने की कला सीखो। हम सब आपको, मैं आपको विशेष कह रहा हूँ कि हर कार्य में परमात्मा को साथी बनाने की कला सीखो, और फिर आप देखो तो आपके कारोबार में कितना फायदा आपको हो सकता है। फिर तो ये बाबा ने कहा अमृत वेले बाबा चक्कर लगाता रहता है, तो ये याद रहे बाबा चक्कर लगाता है। बाप दादा ने देखा कि देखा स्थान सेवा केंद्रों का अच्छा वृद्धि कर रहे हैं, बाबा विशेष हिम्मत पर सदा साथी बनने का वरदान दे रहे हैं। फिर बिजनेस विंग पार्क आदि जो 5 विंग है उसके लिए बाबा ने कहा कि उनके द्वारा जो भी सेवा हुई, जो लिस्ट बने हुए किनकी सेवा हुई, कैसे महारथी कोई विशेष VIP की सेवा हुई है, सहयोगी की हुई, उसका लिस्ट बना करके यहाँ पर भेजना है। फिर बाबा ने डबल विदेशी की बात कही, हाँ कि डबल विदेशी के कारण बाबा का जो है विश्व सेवाधारी वो सिद्ध हो चुका। परंतु बाबा ने एक बहुत अच्छी कल बात कही, जो बाबा ने उन्हों को भी कही हुई है, उन्हों को कहने से पहले हम बच्चों को, भारत के बच्चों को भी ये करना जरूरी है। बाबा ने उनको कहा कि पहले अपना अपना कल्चर बदलने में उनको मुश्किलात होती थी, लेकिन अभी की रिजल्ट के प्रमाण सभी सब बच्चे ब्राह्मण कल्चर के आदति हो गए हैं, और परिवर्तन की शक्ति अच्छी दिखाई है। कितने देश के विदेश के कितने भाई बहन है, कोई अमेरिका का है, कोई इंग्लैंड का है, कोई रशिया का है, कोई ऑस्ट्रेलिया का है, कोई अफ्रीका का है, इतना अनेक का अपना अपना कल्चर था। पर सब पहले बहुत ही समस्या आती थी, अपना कल्चर विदेश का कल्चर समझ करके चलते थे। हमारी विदेश की सेवा करने वाली बहनों ने इन सब के अंदर ब्राह्मण कल्चर उनके रग रग में भर दिया है। ये विदेश में जैसे ब्राह्मण कल्चर कॉमन हो गया, बाबा ने कल कहा ना, हाँ विदेश के ब्राह्मण कल्चर के आदती हो गई है, इस प्रकार से भारत के बच्चों को भी ये आदती होना ही चाहिए। अभी क्या क्या है वो क्या है, थोड़ा हमारे जोन के कारण, हमारी भाषाओं के कारण, इन सब के कारण कोई समझता है कि मैं बंगाली हूँ, कोई समझता है मैं मद्रासी हूँ, कोई समझता है मैं कर्नाटकी हूँ, इस प्रकार से अभी भी है। हमारे पास हमारे फंक्शन में एक बार पालकी वाला करके बहुत प्रसिद्ध जूरिस्ट है, वो बॉम्बे में आया हुआ था, उसने यही कहा कि हिंदुस्तान के अंदर कोई पंजाबी है, कोई हिंदुस्तानी गुजराती है, कोई मराठी है, ये सब है, परंतु कोई भारतीय बहुत कम मिलते हैं। वी आर फर्स्ट इंडियन एंड देन गुजराती पंजाबी ये सब है भाषाओं के आधार पर। इस प्रकार से इस दैवी परिवार के सदस्य बनने के बाद हम पहले क्या है, हम सब ब्रह्मा के बच्चे सच्चे ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण कल्चर हमको डेवलप करना है। ये ब्राह्मण कल्चर क्या है, हमारे जो भी यहाँ सेंटर वाले के आगे क्लास कराने वाले हैं उनको मैं हमारा अनुरोध है कि ब्राह्मण कल्चर क्या है और ब्राह्मण कल्चर हमारे रग रग में कैसे आ जाए। जैसे विदेश के बहन भाइयों ने विदेश के बहन भाइयों के अंदर ब्राह्मण कल्चर लाया और उसका सर्टिफिकेट बाबा ने कल दिया कि ब्राह्मण कल्चर के आदती हो गए हैं, इस प्रकार से भारत के बच्चों से भी बाबा को ये सुगंध आनी चाहिए कि बच्चे पहले ब्राह्मण कल्चर वाले सच्चे ब्राह्मण है। ये ब्राह्मण कल्चर हमको हमारे भारत के अंदर भी लाना जरूरी है। इधर क्या हो गया है, ये जोन का हो गया है, क्या क्या हो गया है, मैं आपको बताऊं। अपने ज्ञान का एक भाई हाईकोर्ट का जज है, हाईकोर्ट का जज है, और वो एक डिस्ट्रिक्ट का भी पालक जज भी था। वो वहां गया तो वहां के सेंटर पर गया तो वहां की बहनों ने और वहां के स्टूडेंट ने कहा नहीं ये तो वो सेंटर का है, हमारा नहीं है, उसको ट्रीटमेंट भी अच्छी नहीं दिया, क्या वो तो वहां का है। इस प्रकार से हमारे जीवन में सेंटरों का भेद, जोन का भेद, इस प्रकार का भाषा भेद अभी तक हमारे जीवन से गया नहीं है। अगर हम ब्राह्मण कल्चर के इस प्रकार का कल्चर हमारे में पक्का हो जाए तो ये जो भेद जो है, चाहे भाषा के आधार पर, चाहे जोन्स के आधार पर, चाहे सेवा केंद्रों के आधार पर, ये सब समस्याएं हमारी भारत के अंदर भी ईश्वरीय सेवा में दूर हो सकती है। बहुत बड़ी बात बाबा ने कह दिया है और बाबा ने विदेश के लिए कह दिया, हाँ बाबा अभी हम भारत के बच्चों से भी हम ब्राह्मीण है, पहले ब्राह्मीण है, इसके बाद जो भी है, गुजराती है, मराठी है, पंजाबी है, बंगाली है, जो भी है वो पीछे हो सकता है, पहले हम सब कौन है, हम ब्राह्मीण है, ब्राह्मीण कल्चर हमारा जो है वो ब्राह्मीण कल्चर हमारी रग रग में चला जाना चाहिए। क्या है कि हम इस जन्म में ये है, कल दूसरे जन्म में दूसरे हो गया, क्या क्या हो सकते हैं। स्टेडिस्टेस करके ट्रांसपर्सनल साइकोलॉजिस्ट है, वो आत्माओं को पिछले जन्मों में भेजता था और पिछले जन्मों के संस्कार को इमर्ज करता था, तो उसने देखा अमेरिका का है, अमेरिका में उसने प्रयोग किया था, कहीं तीन चार जन्म के पहले भारत की भाषा बोलते थे, है ना, तीन चार जन्म पहले भारत का था, कोई कहाँ का था, कोई कहाँ का था, इस प्रकार से होता है। तो हम भी इस तरह समझे, इस जन्म में हम गुजरात के हो, पिछले जन्म में बंगाल के भी हो सकते हैं, उसके पहले के जन्म में पंजाबी भी हो सकते हैं, क्या क्या हो सकता है। बाबा ने तो साफ कहा हुआ कि विदेश में जो गए हुए हैं हम अपनी सेवा अर्थ लास्ट तीन चार जन्म से ही वहां गए हुए, पहले तो ब्राह्मण कल्चर वाले ही थे। अगर विदेश के बहन भाइयों को बाबा ऐसा कह सकते हैं तो हमारे हम क्यों नहीं ऐसा समझे कि हम ये जोन के आधार पर, सेवा केंद्रों के आधार पर, ऐसे या तो भाषा के आधार पर, जो भी डिवीजन जो है वो खाली सेवा के लिए है, बाकी ब्राह्मण कल्चर ही हमारा कल्चर है, संस्कृति है, डिवाइन फैमिली है, ये बात पक्की करनी है। फिर इसलिए बाबा ने कल ये कहा, बहुत अच्छी बात कही है। और इसलिए क्या कहा बाबा ने, फिर एक दूसरी बात कही है, सबको संतुष्ट बनकर के संतुष्ट मणि बनना है। ये बहुत अच्छी बात कही है, हाँ, संतुष्ट बनकर के संतुष्ट मणि बनकर के आगे बढ़ना है। तो क्या बनना है हमको? संतुष्ट मणि। भाई ये सारी बातें बाबा ने कही। और फिर बाबा ने कहा, चाहे क्या है, चाहे कोई इंडिया का है, चाहे विदेश का है, चारों ओर के बच्चे बाप दादा को देख रहे हैं। और बाबा ने हंसते हंसते कहा कि यो क्यों कर, टाइम भी बदली हो जाता है। अभी ऑस्ट्रेलिया जो है यहाँ से तीन चार घंटा आगे है, तो बाबा यहाँ 7 बजे आता है तो वहाँ 10:30 11 बज जाता है। और अमेरिका आदि में 10-12 घंटा पीछे है, तो उनके लिए सुबह का टाइम हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा, चाहे टाइम बदली बदली होता रहेगा, परंतु बाबा के सबको ये दे रहा है, बाबा वरदान दे रहे हैं। और फिर बाबा ने दादी जानकी को भी कहा, जनक बच्ची अच्छी निमित्त है और अच्छी सेवा करा रही है। ये 9:07 हुई है, उसके बाद बाबा ने स्टेज का कारोबार शुरू हुआ। स्टेज पर सबको मिले, जानकी दादी को मिले, रत्नमयी दादी को, सारा आपने मुरली में पढ़ा होगा, ब्रिजमोहन भाई ने दिल्ली का भी बताया। इसके अंदर बहुत अच्छी सेवा का एक लक्ष्य बाबा ने दिया। बाबा निर्भय भाई, ब्रिजमोहन भाई ने कहा कि बाबा इतना बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर रहे, उसके लिए कोई बात कहो, प्रेरणा दो। तो बाबा की प्रेरणा यही है, ये आप सब पक्का करके रखो ईश्वरीय सेवा के अंदर अभी क्या करना है। बाबा कहते प्रेरणा यही है कि जो भी आए, फंक्शन जो होगा ना, बहुत बड़ा फंक्शन कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, बहुत बड़ा। आज कल रात को ब्रिजमोहन भाई से मैं बात कर रहा, सुबह भी मिले, तो बाबा ने कहा कि यही है कि जो भी आए वो कुछ लेकर के जाए। और क्या लेकर के जाए, क्या लेकर के जाए? अब हम सबको ईश्वरीय सेवा जो करनी है उसमें ये बातें सबको देनी है, और ये लेकर के जाए इसका पुरुषार्थ करना है। क्या? पहली बात, वायुमंडल से शांति के वाइब्रेशन लेके जावे। समझा? पहली बात क्या बाबा ने कही, सेवा करते उसके अंदर पहला क्या होना चाहिए, वायुमंडल से शांति का वाइब्रेशन लेके जावे। और दूसरी बात, आगे बढ़ने के वाइब्रेशन लेके जावे, आगे बढ़ने के वाइब्रेशन लेके जावे। सुनते तो है और अच्छा तो लगता है, लेकिन अभी अच्छा बनने की प्रेरणा लेकर के जावे, यही कोशिश करनी है। सेवा के लक्ष्य में क्या बताया बाबा ने, वाइब्रेशन, क्या कहे, वाइब्रेशन शांति के लेके जावे। दूसरा, आगे बढ़ने का वाइब्रेशन लेके आ जावे। और दूसरा, तीसरी कहेंगे अच्छा तो है, अच्छा तो है, आप उनको क्या कहो, अच्छा बनने की प्रेरणा लेकर के जाए। ये हो सकता है? अभी शिवरात्रि का कार्यक्रम आपके, हम सबके पास होगा ना, अच्छे में अच्छी रिश्ते 77th शिवरात्रि मनाने की है, तो इसके लिए ये वाइब्रेशन सबको लेके करने का है। सेवा का लक्ष्य क्या रखना है, शिवरात्रि के ऊपर लक्ष्य क्या रखना है, कि वाइब्रेशन शांति के लेके जावे। फिर आगे बढ़ने का वाइब्रेशन लेके जावे, और जो सुनते हैं उसको अच्छा, जो सुनते अच्छा अच्छा कहते हैं उसके बदले में अच्छा बनने की प्रेरणा लेकर के जाए। ये इस वर्ष का ईश्वरीय सेवा का लक्ष्य बाबा ने दिया। ठीक है ना, सबको मंजूर है? अभी शिवरात्रि इसी लक्ष्य करना। फिर बाबा ने हमको कहा, आपकी, बाबा ने जो कहा मैं आपको सुना देता हूं। मैंने बाबा को कल संदेश भेजा था, हमारे स्पार्क की मीटिंग में भी उसकी चर्चा हुई थी, और मैंने बाबा को संदेश भेजा था। यहाँ पर भी जो भी बहन उस टाइम पर थे, वो अहमदाबाद की वंदना बहन, वंदना राज करके एक बहन आई थी, उसने अहमदाबाद के अंदर नए ढंग से महात्मा मंदिर के अंदर म्यूजियम बनाया हुआ है, महात्मा गांधी के कनेक्शन, उसके अंदर 3 डायमेंशन है, होलोग्राम आदि आदि नए तरीके से और वो म्यूजियम बनाया हुआ था, तो हमारे पास उसका समाचार आया था, तो हमने उस बहन को बुलाया और यहाँ पर दादी जानकी से भी मिलाया, दादी गुलजार दादी से भी मिलाया, हमारे मुन्नी बहन मोहिनी बहन से भी, ईशु दादी से भी मिलाया। वो दादी कॉटेज में भी गई, स्टूडियो में भी जाकर के उसने अपना अनुभव सुनाया और अपने स्पार्क मीटिंग में भी उसने बात कही और आप सबको यहाँ इसी स्टेज पर भी मिली हुई थी। तो वो अभी हम चाहते हैं कि हमारे जो म्यूजियम जो है ना, वो म्यूजियम्स पुरानी स्टाइल के बने हुए हैं, उसको नई स्टाइल से विज्ञान की साधन के आधार पर, क्योंकि 4-5 साल पहले और अपना जर्मनी का एक भाई होलोग्राम से ब्रह्मा बाबा का चित्र बना करके लाया था। नई चीज है होलोग्राम, उस टाइम पर हिंदुस्तान में भी ये बात नहीं आई थी। जर्मनी का भाई जर्मनी में बना करके लाया था, मैं भी स्टेज पर बाबा के वहां ही था, मैं साथ में वो भाई को लेकर आया था। तो बाबा ने वो होलोग्राम को देख करके मुझे कहा कि बच्चे भविष्य के चित्र इस होलोग्राम की स्टाइल से उनके आधार पर, इस विज्ञान के ये नई कला है उसके आधार पर नए बाबा के म्यूजियम के चित्र बनने चाहिए। मैंने कहा बाबा जरूर करेंगे, जब बाबा डायरेक्शन देते हैं, श्रीमत देते हैं, तो हमारी फर्ज हो जाती है कि हम उसको करें। परंतु क्या है, वो होलोग्राम की टेक्निक जो है हमारे पास अभी तक हिंदुस्तान में नहीं आई थी। अब ये होलोग्राम की टेक्निक, 3 डायमेंशन की टेक्निक आदि आदि जो भी है, वो नए जमाने के नए साधनों के द्वारा 3D के आधार पर आदि, आप जानते हैं क्या क्या परिवर्तन विज्ञान के द्वारा हो रहा है। विज्ञान के द्वारा ये दुनिया छोटी हो रही है। हमारे कई बहन भाई ने विज्ञान के आधार पर समझा ही नहीं है, हमको पत्र लिखते रहते हैं। अभी पत्र लिखने के बदले में फोन के द्वारा बहुत अच्छा कारोबार हो सकता है। आज आप जानते हैं, मोबाइल फोन वाले जानते हैं कि एसटी करना हो, 1 मिनट का 1 रुपया ही खर्चा होता है। 5 रुपये में आप 5 मिनट बात कर सकते हैं किसी के साथ। उसके बदले में कागज लिख करके भेजेंगे तो एक लिफाफा के ऊपर 5 रुपये का तो स्टैम्प लग ही जाता है और उसमें थोड़ी सी बात होती है और लेन देन नहीं होती, फिर जवाब मिलेगा, फिर आएगा जवाब, जानकार लेन देन होती है। इसके बदले में फोन के द्वारा कारोबार करें तो कितना जल्दी हो सकता है। हमारे विदेश के बहन भाइयों ने वो अपनाया हुआ है, कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं आदि आदि, कई नई टेक्निक को, विज्ञान के नए साधन को ईश्वरीय सेवा के अंदर अपनाया हुआ है, कारोबार के अंदर अपनाया हुआ है। आज बिजनेसमैन भी छोटा सा ऑफिस होगा उन करोड़ों का बिजनेस इसका ईमेल आदि के द्वारा, ईमेल फैक्स आदि आदि के द्वारा, फेसबुक आदि के द्वारा क्या क्या करते रहते हैं। कल ही एक बहन ने कहा कि हम रमेश भाई आपका एक पास जो उसके ऊपर आ जाए तो कम हम कमिश के लिए पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो ये आप करिए। तो इस प्रकार से विज्ञान के नए साधन जो है उसको अपनाना चाहिए, वो हमने बाबा को लिखा था। तो बाबा ने कहा ये बात भी अच्छी है, तो ये बाबा ने कल छुट्टी दिया हुआ है क्योंकि हमको कई बातों में नए कारोबार करने के लिए बाबा ने वरदान दिया है। तो इसके आधार पर ये विज्ञान के नए साधनों के आधार पर हम चाहते हैं कि हमने नक्की किया उस बहन के साथ मिल करके कि बाबा का म्यूजियम जो है उसमें 3 बातें बद्दी कर सकते हैं। एक तो ब्रह्मा बाबा का परिचय उस प्रकार से दे सकते हैं, फिर राजयोग के द्वारा अनुभूतियां क्या हो सकती है, 3 डायमेंशन के इफेक्ट के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है, रियलाइजेशन आदि आदि वो सब बातें हो सकती है। और तीसरी बात कि जो सत्युग हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं वो सत्युग की भी बातें दुनिया वालों को दिखा सकते हैं। तो ये बाबा ने कल बताया, छुट्टी दी, हमने बाबा को दिखा के क्या हम ईश्वरीय सेवा के अंदर ऐसे विज्ञान के नए साधनों के द्वारा हमारे ईश्वरीय सेवा के साधन है, हमारे जो भी म्यूजियम शादी है उसके अंदर परिवर्तन करें, तो बाबा ने उसको छुट्टी दिया है। ये आप सबको मालूम रहे कि हम बच्चों को विज्ञान के नए साधनों के द्वारा और साधनों के द्वारा सहज साधना भी हो सकती है, उसके लिए बाबा ने छुट्टी दिया। दूसरी एक बात, बहुत बड़ी बात, जैसे बाबा ने कहा ना कि विज्ञान के साधन जो बन रहे हैं वो आप बच्चों को ही ईश्वरीय सेवा में सेवा सहज हो सके इसके लिए वो साधन बने हुए हैं और आप बच्चे साधनों का उपयोग भी करते हो। इस प्रकार से सरकार ने कानून में भी परिवर्तन किया हुआ है, आप सब ध्यान से सुनिए, सरकार ने कानून में परिवर्तन किया हुआ है। कंपनीज एक्ट जो है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो भी है, जिसका प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा होता है, ऐसी कंपनियों के ऊपर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज करके सेक्शन 1 कंपनीज एक्ट में सेक्शन 135 जो अंग्रेजी जानते होंगे उनके लिए कह रहा हूं, कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 135 के अंदर उनके ऊपर कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के आधार पर उनको कहा है कि आपका जो भी प्रॉफिट है, जो ये 5 करोड़ से ज्यादा कमाने वाली कंपनियां जो है उनको कहा है कि आपको अपने प्रॉफिट का 2% जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, समाज का उत्थान के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए 10 चीजें उसमें लिखी हुई है शेड्यूल 7 के अंदर, उसके द्वारा उसके ऊपर खर्च करने का है। और इसके लिए कोई भी संस्थाएं जो भी है अच्छा काम करती है उनका सहयोग लेकर के ये सब कार्य करना है। ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन कारोबार के अंदर, कंपनियों के कारोबार के अंदर किया हुआ है, बहुत बड़ा। आप सबको अंदाज नहीं होगा कि 2% के आधार पर क्या होता है। जैसे वो गीत है ना कि बूंदे मिल हो अखंड धारा जग हो वे पानी पानी, आकाश में से तो बूंद के रूप में ही बारिश होती है, परंतु उसके आधार पर फ्लड्स आ जाते हैं, क्या क्या हो जाता है, सुनामी आ जाता है। इस प्रकार से ये 2% के हिसाब से क्या होगा, प्रति वर्ष सरकार ने 6,750 करोड़ रुपया समाज सेवा के लिए ऐसी बड़ी बड़ी 5 करोड़ से ज्यादा कमाई करने वाले कंपनियों के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली है, कंपलसरी डाली हुई है। और इसके लिए उनके डायरेक्टर्स का एक कमिटी बना करके करने का, और जो कंपनी इस प्रकार से खर्च नहीं करे वो अपने शेयर होल्डर को खास लिखे, तो हमने ये बात नहीं कही है, इस प्रकार से लिखने का। और जो भी ये खर्चा करेंगे 2% तक का उसको इनकम टैक्स में पूरी छूट मिलेंगी। मैंने कंपनियों के ऊपर 35% टैक्स है, और जो क्लोजली हेल्ड है सेक्शन 108 की कंपनी से उनको तो बहुत ज्यादा टैक्स है, 55-60% है। इन सबको ये 2% खर्च करने से उसके ऊपर छूट मिल जाएगी। माना 35% तो मिनिमम है, तो मिनिमम मतलब कंपनियों के ऊपर वो मिनिमम छूट है नहीं, 1 रुपया की भी प्रॉफिट करेंगे तो उसके ऊपर 35 पैसा टैक्स है। तो इसलिए जो भी 2% के हिसाब से खर्च करेंगे वो इसमें से 35% तो सरकार अपने जेब से देंगे, और बाकी वो कॉरपोरेशन को 65% ही काम मिलेगा। और गवर्नमेंट वालों को, गवर्नमेंट कंपनियों को और भी फायदा कर दिया है सरकार ने, कि जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है वो इस प्रकार से कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के द्वारा कार्य करेगा। समझो फॉर एग्जाम्पल ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन जो है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का प्रॉफिट जो है एवरेज प्रॉफिट 2,000 करोड़ से ज्यादा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अपने जो भी यहां बैठे हुए होंगे उनको मालूम होगा, 2 दिन पहले ही आया हुआ है इस वर्ष का एस्टीमेट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है 3,400 करोड़ रुपए का, इतना प्रॉफिट है। तो ऐसे बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन जो है वो 2% के हिसाब से जो भी खर्च करेंगे उसका 1% उसका मैनेजिंग डायरेक्टर जो होगा उसको बोनस के रूप में मिलेगा। ऐसे क्या है ऑफिसर्स को बोनस नहीं मिलता है, परंतु सरकार ने ये 2% कॉन्ट्रीब्यूशन के आधार पर उनको बोनस का प्रोविजन कर दिया गवर्नमेंट कॉरपोरेशंस को। तो इसी हिसाब से आप देखिए सरकार सहकार की भूमिका के आधार पर, उसमें एजुकेशन है, बहनों का उत्थान जो है ना, गरीब लोग जो है उसको भी मदद करे महंगाई के जमाने में, ऐसी ऐसी बहुत सी बातें जो है उसके ऊपर सरकार ने खर्च करने की छुट्टी दी हुई है। हमारे स्पार्क की मीटिंग में इसके ऊपर चर्चा हुई और उसके आधार पर हमने नक्की किया स्पार्क के बहन भाइयों ने कि इस वर्ष 2013 में इस वर्ष सहकार की भूमिका के आधार पर, इन बड़ी बड़ी कॉरपोरेशन के सहकार की भूमिका के आधार पर 100 करोड़ रुपया ऐसी कंपनियों से सहकार में पैसा लेकर के इसके द्वारा ईश्वरीय सेवा में नवीनता, सहकार की भूमिका के आधार पर सेवा का कारोबार करने का लक्ष्य रखा है। हमने ये सर्कुलर हमारी 3 भाइयों की मीटिंग में पास करके हमने सभी जोन इंचार्ज और सभी विंग्स के इंचार्ज को ये भेजा हुआ है, और इसलिए ये सब कर सकते हैं। और इसके लिए वर्ल्ड यूनिवर्स स्पिरिचुअल ट्रस्ट है, ब्रह्मा कुमारीज एजुकेशनल सोसाइटी है, राज्यों का एजुकेशनल रिसर्च फर्स्ट है। तो इस प्रकार से ये कारोबार जो है, इस प्रकार से 2% के खर्च के हिसाब से ये कारोबार करना है। और इसके आधार पर एक नया बाबा ने स्लोगन भी दिया, हमने संदेश भी भेजा था, तो बाबा का अब एक नया सेवा के अंदर ये प्रोग्राम बनाना है कि सहकार के आधार पर ईश्वरीय सेवा, औरों के सहकार के आधार पर। क्यों? क्योंकि बाबा ने संदेश में हमको कहा था कि अब लोग स्वपसंद, प्रभु पसंद और लोक पसंद। स्वपसंद तो आप जानते हैं हमारी धारणाओं के आधार पर हम बनते हैं, प्रभु पसंद जो है परमात्मा के बाबा के बच्चे बनकर के धारणाओं के आधार पर बनेंगे। और अब लोक पसंद बनना है तो लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की समस्याएं जो भी है, इन समस्याओं को उनके साथ मिलजुल करके कारोबार करने का, इस प्रकार का कारोबार करेंगे तो क्या हो जाएगा? ईश्वरीय सेवा में एक नया चैप्टर, न्यू डायमेंशन इन गॉडली सर्विस हो जाएगा। और इसलिए ये नया आयाम को, नया गॉडली सर्विस का कारोबार जो भी है, इसके लिए कल बाबा ने छुट्टी दिया। मैं इसलिए बाबा का ये नई छुट्टी का जो कारोबार जो है, जो बाबा ने दिया हुआ है स्टेज पर सबके सामने कहा हुआ है, ये आप सबको मालूम रहे। और इस प्रकार से जिनों का कनेक्शन ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिसरों आदि के साथ होगा तो काम अच्छा हो सकता है। एक एक एमपी जो भी है, हर एक एमपी को 5 करोड़ रुपया प्रति वर्ष खर्च करने का अधिकार है। आप सबको मालूम नहीं रहोगे, हम तो यहाँ कारोबार में रहे हुए इसके मालूम है कि एक सेवा केंद्र के अंदर उनकी एमपी की इतनी अच्छी सेवा की हुई है, उसके आधार पर उस एमपी ने उस सेवा केंद्र को 50 लाख रुपए का सहयोग देने का कबूल किया हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बाबा की यहाँ जो ट्रॉम्बे हॉस्पिटल है उसको 2 एम्बुलेंस दिया हुआ है। ईस्टर्न जोन के अंदर कई 2-4 ऐसी है जिनके अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने कार दिया हुआ, ऐसे बहुत कुछ सहयोग दिया है। 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख तो कई सेवा केंद्रों को ईश्वरीय सेवा के अंदर मदद के रूप में मिल रहा है। हम MOU बना करके उनके साथ कारोबार करते हैं। तो एक नया, इस प्रकार से ईश्वरीय सेवा का एक नया चैप्टर सहकार के आधार पर, कॉरपोरेशन के आधार पर सेवा करने का प्रोग्राम बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये कारोबार बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और इसलिए ये नया कारोबार जो है हमारे बुद्धि में भी परिवर्तन करने का है कि सहकार के द्वारा हम सेवा कैसे कर सकते हैं, जिसको अंग्रेजी में कह सकते हैं कि स्पॉन्सरशिप के द्वारा, या तो MOU बनकर के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आदि के द्वारा कार्य कर सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों आदि के द्वारा। और उसके द्वारा हमारे एजुकेशन का कारोबार, हमारे बहनों के जीवन का उत्थान आदि करने के लिए जो 10 बातें लिखी हुई है, हम सब वही कर रहे हैं, वही बात सरकार बड़ी कंपनियों के सहयोग से हम कर सके, इसके लिए हमारे लिए उसका गेट खोल के रखा हुआ है सरकार ने। तो ये बात करनी है, एक नया कल्चर हमको डेवलप करना है, हमारे बुद्धि के अंदर ये नया परिवर्तन करके नई सेवा का कारोबार करना है, ये बात बाबा ने कही हुई है। तो इसके लिए आप सब सोचना है, इसके बारे में बाबा ने कल बताई है। बाकी एक बात दूसरी एक मेरे को आप सबको कहने की थी कि जितने जितने हम आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो दुनिया वाले भी हमारा फायदा लेने का प्रयत्न करते हैं। कल के अखबार में आया हुआ है, आप सब ध्यान से सुनिए कि अभी क्या हो रहा है। हमारे महाराष्ट्र में भी ऐसा ही हुआ है कि एक बहन ब्रह्मा कुमारी बनकर के दुनिया वालों से सहयोग लेकर के करोड़ों रुपए का फायदा सेवा का ले रही है ब्रह्मा कुमारी के नाम पर। इस प्रकार से परसों ये अहमदाबाद का 19 तारीख का है न्यूज़पेपर, उसमें लिखा हुआ है, मैं आप पढ़ता हूं कि आसाराम के गुंडाओं ने रानी अहमदाबाद में रानी विस्तार में गीता स्कूल के अंदर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के नाम पर मातृ और पितृ पूजन के कार्यक्रम की योजना बना करके परमिशन लेकर के फिर वहां जाकर के आसाराम बाबू को फोटो बता करके उसमें उनकी आरती करके आसाराम बाबू के ज्ञान का प्रचार करने का कारोबार किया। लोग इसके कारण उनसे विरुद्ध हो गए, उन्होंने जो करने वाले आए थे ना उनको भगा दिया, उनकी गाड़ी का भी का शीशा वैसे तोड़ दिया। इस प्रकार से कल आया हुआ है और खास लिखा है जो स्कूल की जो आचार्या थी, प्रिंसिपल जो थी, उसने कहा है, भारती बहन करके है, उसने लिखा है कि सोमवार को, ये पिछले सोमवार को, दो दिन पहले का सोमवार को, दो तीन दिन पहले के सोमवार को, कि दोपहर में 3 बजे वो आए सफेद कपड़े में, हम क्या हम ब्रह्मा कुमारी से आए हुए हैं और हमको बच्चों को मातृ और पितृ महिमा पूजन का कार्यक्रम सिखाने के लिए हम आए हुए, और ब्रह्मा कुमारी का नाम तो सबने सुना हुआ है, इसलिए उन्होंने वो प्रिंसिपल बहन तो छुट्टी पर थी, उसका क्लार्क था इंदिरा बहन करके, उसने उनको छुट्टी दे दिया। छुट्टी लेकर के वो ब्रह्मा कुमारी के ड्रेस में आए हुए थे और इन्होंने जाकर के आसाराम बाबू का फोटो निकाला और उसकी आरती कर करके उनका कारोबार कर सिखाना शुरू कर दिया। उसके कारण उन्होंने खास लिखा हो ऐसे ब्रह्मा कुमारी के नाम पर ओम शांति भवन से भी हम आए हुए, इतने तक उनका न सिर्फ ड्रेस परंतु ब्रह्मा कुमारी का ओम शांति भवन जो है वहां से हम आए हुए, इस प्रकार के हमारे नाम पर डुप्लीकेट बनकर के जाकर के इस प्रकार से सेवा की। और इसके कारण क्या हो गया, ये तो अखबार वाले सब जान गए, लोगों ने भी पहचान लिया और इसके कारण हमारा नाम बदनाम होते होते रह गया। पर तो कहने का तात्पर्य यही है कि अभी हमारा संस्था का बाबा का नाम जितना जितना प्रसिद्ध होता जाएगा इतना इतना हमारे नाम पर, जिसको हम गुजराती में कहते हैं कि हमारे नाम पर अपना बंदूक की गोली चलाने के लिए इस प्रकार से लोग आगे आ रहे हैं। बहुत हमारे पास ऑफर्स आ रही है कि हम ये करें, माइंड मेजर, ये याद शक्ति बढ़ाने का कार्यक्रम करें, इसने इतनी प्रपोजल आती है हमारे नाम पर, मतलब ब्रह्मा कुमारी के नाम पर ये काम करने का। तो इसलिए याद रहे कि कल जैसे ये अखबार में आया कि ब्रह्मा कुमारी के नाम पर मातृ पितृ वंदना का कार्यक्रम करने के बाद वहां जाकर के फिर ये नाम तो इस पे लिखा हुआ है, इसलिए मैं पढ़ता हूँ कि अखबार में आया गया आसाराम बापू का फोटो रख करके उसकी आरती उतारना और उनका गायन भजन आदि सब करना और उसके ज्ञान सुनाने का प्रयत्न स्कूल में जो प्रयत्न किया। और उसके बाद में उसमें लिखा हुआ है कि अपनी गलती मालूम पड़ गई, इसके कारण क्या हो गया, उस विस्तार के लोग स्कूल के माँ बाप, बच्चों के माँ बाप आदि उन्होंने साधकों को गुंडागिरी से किया, मारपीट किया और मामला बहुत बिगड़ गया, ऐसा मतलब इस अखबार में आया हुआ है। तो इसलिए ये आपको ध्यान में रहे कि हमारे नाम पर ऐसे काम करने वाले दुनिया में आगे हमारा नाम का फायदा लेने के लिए दुनिया में लोग आ रहे हैं, ये बात आपको ध्यान में रहे। आप समझ गए, ये बहुत बड़ी बात है कि हमारे नाम पर कलंक लगाने वाली कार्यविधि करने के लिए लोग आएंगे, हमारा नाम बदनाम करेंगे। लोग कहेंगे अरे अच्छा, उनको मालूम नहीं होगा तो ऐसा ही कहेंगे, अच्छा ब्रह्मा कुमार भी ऐसे होते हैं, ब्रह्मा कुमारियां भी ऐसे होती है, इस प्रकार से हमारा नाम बदनाम करने के लिए दुनिया वाले हमारे नाम पर काम अपना करने के लिए आएंगे। ये सावधानी कल के अखबार में आया था, सोमवार के दिन दोपहर में 3 बजे ये बना अहमदाबाद के अंदर, एक गीता स्कूल करके एक है स्कूल के अंदर ये बात हुई है। तो ये बात आपके ध्यान पर रहे, ये कल का कारोबार जो है ये आपको मालूम रहे। अभी हम 2 मिनट बाबा को याद करके करेंगे।